हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रिया सिंह है और आज मैं आपके साथ आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है बच्चों भारत में राजनीतिक विकास। और अभी तक हमने देखा कि कैसे भारत के एंशिएंट टाइम में भी यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता था और वो कैसे काम करता था। इसके बाद ब्रिटिश के टाइम पर इसमें कौन कौन से चेंजेस आए या ब्रिटिशर्स ने ऐसी कौन कौन से स्टेप्स लिए जिसकी वजह से आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ है उसको हम मान सकते हैं कि वो उस टाइम का ही रिजल्ट है। इसके बाद बच्चों हमने देखा इंडिपेंडेंस के बाद हमारे भारत ने जो सबसे बड़े प्रॉब्लम को फेस किया, यानी जो रियासतें थी उसको भारत में सम्मिलित करने का प्रॉब्लम, इसको भारत ने कैसे डील किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था और वो रियासतें कौन सी थी, उनका क्या इम्पोर्टेंस था। और इसी टॉपिक के अंदर हमने देखा था जूनागढ़, हमने देखा था हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, गोवा और पौंडीचेरी। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था राजस्थान का एकीकरण, कि राजस्थान पहले जो रियासतों में बटा हुआ था वो बाद में जा करके एक बड़ा राजस्थान कैसे बना। और अभी तक हमने इस पॉइंट में 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा कि मत्स्य संघ कैसे बना, पूर्वी राजस्थान कैसे बना, संयुक्त राजस्थान कैसे बना, और इसके बाद आज हम देखेंगे बृहत राजस्थान के बारे में। तो चलिए फटाफट से आप लोग पेज नंबर 82 ओपन करिए और इस पर दिया गया पॉइंट 4 इस पर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है बृहत राजस्थान, जिसके अंदर लिखा है मेवाड़ के विलय के बाद शेष राज्यों का विलय आसान हो गया था। चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण रियासतों का विलय कर वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल ने इसका उद्घाटन किया। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख व हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। जयपुर को इसकी राजधानी घोषित की गई। एकीकरण का यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होने के कारण ही 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ हम जिस राजस्थान की बात कर रहे हैं, यानी कि बृहत राजस्थान, इसका मतलब ही शो करता है कि यहाँ पर बड़े हिस्से में यूनिफिकेशन हुआ होगा। जो मेवाड़ था, मेवाड़ के विलय के बाद बाकी जो बचे हुए राज्य थे उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया भारत के साथ विलय करने में, और इनका विलय जो था वो बहुत आसानी से हो गया। चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी जो बड़ी और महत्वपूर्ण, यानी कि ये एरिया वाइज भी बहुत बड़ी थी और इनका इम्पोर्टेंस भी ज्यादा था, इन सभी को मिला करके एक राजस्थान बनाया गया जिसको बृहत राजस्थान का नाम दिया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल ने किया था। मेवाड़ के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, इनको यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया और इसके साथ साथ जयपुर को यहाँ की राजधानी घोषित की गई। और जो यूनिफिकेशन का ये फोर्थ लेवल था ये बहुत इम्पोर्टेंट था, और इसी वजह से जो 30 मार्च को इसका यूनिफिकेशन हुआ, इसीलिए 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस क्यों मनाते हैं, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि 30 मार्च को ही बृहत राजस्थान का एकीकरण हुआ था और ये बहुत इम्पोर्टेंट थी एरिया वाइज भी और इसकी इम्पोर्टेंस में भी। इसके बाद बारी आती है संयुक्त बृहत राजस्थान। इसमें लिखा है, इस सारी प्रक्रिया के बीच मत्स्य संघ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इसके बारे में फैसला करना आवश्यक था। इसलिए 15 मई 1948 को मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय कर संयुक्त बृहत राजस्थान का गठन किया गया व शोभाराम शास्त्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसी बीच में जो पहले का मत्स्य संघ बना था वो इंडिपेंडेंटली तरीके से अपने आप में अच्छा काम कर रहा था, लेकिन बच्चों मत्स्य संघ को अगर आप मैप में देखेंगे तो इसकी रीजन की बाउंड्रीज उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से लगती है और इसकी सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण लोगों को, लीडर्स को उसकी अधिक चिंता थी, किसकी, मत्स्य संघ की। और इसीलिए मत्स्य संघ को संयुक्त बृहत राजस्थान बनाने के लिए लीडर्स ने इसका विलय बृहत राजस्थान में करवा दिया और इसके बाद 15 मई 1948 को मत्स्य संघ की जगह इसका नाम संयुक्त बृहत राजस्थान हो गया और इसमें शोभाराम शास्त्री को मंडल जो मंत्रियों का होता है उसमें इनको शामिल किया गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है राजस्थान संघ, जिसमें लिखा है, विलय के इतने चरणों के पश्चात सिरोही के प्रश्न का समाधान करना शेष था कि उसका विलय राजस्थान में किया जाए अथवा तात्कालीन बंबई प्रांत में शामिल किया जाए। 26 जनवरी 1950 को सिरोही की दो तहसीलें आबू व देलवाड़ा को बंबई राज्य में, शेष सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया। सिरोही की जनता दोनों तहसीलों का भी राजस्थान में विलय चाहती थी। अतः इस प्रकरण को राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंप दिया गया। तो इसका मतलब है बच्चों कि ये जो कई सारे फेजेस में यूनिफिकेशन हो रहा था राजस्थान का, उसमें एक अब जो प्रॉब्लम नहीं आई थी वो थी सिरोही की प्रॉब्लम। यानी सिरोही एक ऐसा जगह है बच्चों जिसको लेकर के कंफ्यूजन था कि उसको राजस्थान के साथ यूनिफाई किया जाए या फिर आज का जो बंबई है उसके साथ उसको शामिल किया जाए। नाम ध्यान से सुनिए, उस जगह का नाम है सिरोही। स्टूडेंट्स, अभी मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और शायद इसी वजह से बैकग्राउंड में रेनफॉल की आवाज हो रही है। आपको हो रही प्रॉब्लम के लिए आई एम रियली अपोलोजाइज्ड, बट अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, सो आई जस्ट होप कि आपको ये चैप्टर का ये पोर्शन अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों हम बात कर रहे थे सिरोही की। सिरोही को लेकर के कंफ्यूजन ये था कि उसको राजस्थान के साथ मिलाया जाए या फिर बंबई के साथ मिलाया जाए, और इसी के समाधान हेतु 26 जनवरी 1950 को सिरोही की दो तहसीलें की गई, यानी कि सिरोही नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी दो तहसीलें बनाई गई। एक का नाम था आबू और देलवाड़ा। आबू और देलवाड़ा को बंबई राज्य में और बाकी बचा जो सिरोही था इसको राजस्थान में मिलाया गया। जो सिरोही की जनता थी बच्चों
वो दोनों तरफ यानी जो दो तहसीलें बनी थी वो दोनों तरफ से विलय करना चाहती थी, और इसलिए यूनिफिकेशन के इस प्रोसेस को बाद में जा करके राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंप दिया गया। ये एक ऐसा कमीशन था जो कि राज्यों का पुनर्गठन करता था। बच्चों इसके बाद हमें पेज नंबर 82 पर ही 7 पॉइंट में लिखा है वर्तमान राजस्थान का निर्माण, जिसके अंदर लिखा है ब्रिटिश काल में अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र प्रशासित प्रदेश था, अतः 1926 तक यह ग श्रेणी का स्वतंत्र राज्य बना रहा। अंततः राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर इस क्षेत्र का भी राजस्थान में विलय किया गया। साथ ही आयोग की सिफारिश पर आबू व देलवाड़ा को भी राजस्थान में मिलाया गया। मध्य प्रदेश से लगी सीमा का भी पुनर्निर्धारण किया गया। मध्य प्रदेश के सुनेल लपट्टा को राजस्थान में तथा राजस्थान के सिरोंज को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया व राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में गुरुमुख निहाल सिंह को शपथ दिलाई गई। तो इस पॉइंट में हम समझेंगे जो वर्तमान राजस्थान है इसका निर्माण कैसे हुआ। बच्चों ब्रिटिश पीरियड में यानी ब्रिटिश काल में जो अजमेर और मेरवाड़ा का रीजन था ये एक केंद्र प्रशासित प्रदेश था, यानी कि यूनियन टेरिटरी थी, और इसीलिए 1956 तक इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया था, यानी ग श्रेणी में स्वतंत्र राज्य की तरह रखा गया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग इसने एक सजेशन दिया या फिर सिफारिश की कि इस क्षेत्र को राजस्थान में विलय करवाना चाहिए, ना केवल अजमेर और मेरवाड़ा बल्कि इस कमीशन ने ये भी सजेशन दिया कि आबू और देलवाड़ा जो है इनको भी राजस्थान में ही मिला देना चाहिए। मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर इस कमीशन के पुनर्निर्धारण का काम समाप्त हुआ, और इसीलिए आज का जो राजस्थान है वो इन सारे रीजन से मिल करके बनता है। और कब ये काम कंप्लीट हुआ? तो ये काम 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। और इसके बाद राज प्रमुख का जो पद था इसको हटा दिया गया और प्रथम राज्यपाल जो बने यानी फर्स्ट गवर्नर वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। और ऐसे जाकर के आज का जो हमारा प्रेजेंट राजस्थान है इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों हमें पेज नंबर 83 पर कंटिन्यू करना है और आगे देखना है कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो इसमें लिखा है राज्यों का पुनर्गठन, जिसके अंतर्गत लिखा है स्वतंत्रता के तुरंत बाद राज्यों के पुनर्गठन की मांग एक प्रमुख आंदोलन बनकर उभरी, विशेषकर भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग तेजी से होने लगी। वास्तव में स्वतंत्रता से बहुत पहले सन 1917 में ही कांग्रेस पार्टी ने यह स्वीकार किया था कि आजादी मिलने के बाद वह भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन करेगी, लेकिन आजादी के बाद पंडित नेहरू आदि भाषाई आधार पर राज्य निर्माण को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप कन्नड़ भाषियों के लिए कर्नाटक, मराठी भाषी लोगों के लिए संयुक्त महाराष्ट्र, पंजाबी भाषा के पंजाब राज्य आदि की मांगे उठने लगी। लेकिन इन सबसे ज्यादा आक्रामक आंदोलन आंध्र इलाके में तेलुगु भाषी लोगों ने प्रारंभ किया। यह अपने को मद्रास से अलग कर आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर श्री रामोलु नाम के व्यक्ति ने अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्री रामोलु की मृत्यु हो गई, जिसकी खबर सुनकर पूरा आंध्र का इलाका अराजकता में डूब गया। उसकी मृत्यु के 2 दिन बाद सरकार ने घोषणा की कि वह आंध्र प्रदेश के निर्माण करने के लिए तैयार है। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कर दी गई। इस तरह भाषा के आधार पर गठन होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। इसका मतलब ये है कि जब इंडिपेंडेंस मिला था बच्चों और स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तब हमारे लीडर्स ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की, और वो प्रॉब्लम थी बच्चों लैंग्वेज की। वैसे तो आज भी हमारी कंट्री में कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और हिंदी जो है वो एक कार्यकाजी लैंग्वेज है, यानी कि ये हमारी मातृभाषा है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। वैसे ही इंग्लिश को भी कामकाजी भाषा का दर्जा मिला। और जब स्टेट्स के फॉर्मेशन की बात आई तो हमारे लीडर्स ने मना कर दिया कि उनको भाषा के आधार पर किसी स्टेट का फॉर्मेशन नहीं करना है। और उन लीडर्स में से जो मेन नाम है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कई सारे साथी। और उनका मानना ये था कि अगर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो जाएगा तो इससे रीजनल्स भाषा को प्रमोशन मिलेगा या फिर कोई नेशनैलिटी की फीलिंग नहीं रह जाएगी। और इसी डर से कि हमारे देश में बाल्कनाइजेशन न हो, बाद में राज्यों का विभाजन न हो, इस चक्कर में एक राष्ट्र और एक भाषा पर जोर दिया गया, और फिर उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने की बात की गई। तो ये तर्क था जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस के मेंबर्स का। बच्चों, लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट्स थे जैसे मद्रास, जो कि तमिल भाषा को लेकर के एक अलग स्टेट बनाना चाहता था, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा को लेकर के एक अलग स्टेट बनाना चाहता था, वैसे ही महाराष्ट्र मराठी भाषा को लेकर के एक अलग स्टेट बनाना चाहता था। पहले तो इन सब के इन मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया, लेकिन एक ऐसा समय आया जब 1952 में एक ऐसे इंसान जिनका नाम था श्री रामोलु, इन्होंने 58 डेज का हंगर स्ट्राइक किया और इनकी डेथ के बाद बहुत ज्यादा अराजकता फैल गई। अराजकता का मतलब होता है टेंशन फैल गई, यानी लोग परेशान हो गए कि कैसी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है उन्होंने। बहुत हल्ला होने लग गया, लोग सड़कों पर उतर आए, वॉयलेंस स्प्रेड होने का डर था। और इसी चीज को रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला किया कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया जाएगा। और इसीलिए
1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कर दी गई और इसी तरह से भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनने वाला पहला राज्य था। इसके बाद लिखा है पेज नंबर 83 पर ही, इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य निर्माण की मांग बलवती होती गई। अतः भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। जस्टिस फजल अली को आयोग का अध्यक्ष तथा के.एम. पणिक्कर व एच.एन. कुंजरू को इसका सदस्य बनाया गया। सन 1955 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन सौंपा, जिसके आधार पर भारत की संसद द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक पास कर दिया गया। 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई, लेकिन राज्यों के निर्माण की मांग को लेकर देश के विभिन्न भागों में आंदोलन जारी रहे। इसमें सबसे बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ, जिसके आधार पर 1960 में सरकार ने बंबई राज्य को बांटकर महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों का निर्माण किया। उसके बाद भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुनर्गठन का सवाल पैदा हुआ। इस क्षेत्र में मुख्यतः जनजाति समुदाय के लोग रहते थे, जहां ईसाई मिशनरी सक्रिय हो गए। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में अनेक अलगाववादी गतिविधियां प्रारंभ होने लगी, जिसमें नागा जनजाति का आंदोलन महत्वपूर्ण है, जो फिजो के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। अंततः 1963 में नागाओं के लिए नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। इस तरह की समस्या पूर्वोत्तर के मिजो स्वायत्त क्षेत्र में प्रारंभ हुई, जहां लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन कर अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ किया गया। एक समझौते के द्वारा इस समस्या का अंत भी किया गया और 1987 में मिजोरम नामक नए राज्य का गठन किया गया। 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश व गोवा को भी केंद्र शासित राज्यों से पूर्ण राज्य बनाया गया। इससे पूर्व 1972 में मेघालय को अलग राज्य बनाया गया तथा मणिपुर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसका मतलब कि इंडिपेंडेंस के इस घटना के बाद राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी वो बहुत जोरों से काम करने लगी और इसी के लिए हमारे लीडर्स ने एक कमीशन तैयार किया, जिसको हम अली फजल कमीशन के नाम से जानते हैं। और ये कमीशन 1953 में आई थी, जिसके अंदर जस्टिस फजल अली को इस आयोग का अध्यक्ष रखा गया, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू को इसका सदस्य बनाया गया। बच्चों, इस एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूं। आप इमेजिन करिए कि आपकी क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो गई है या फिर कोई प्रोजेक्ट मिला है ऐसा बनाने के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके टीचर ने 4-5 ग्रुप्स डिवाइड किए ताकि आप प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सके, और जब ऐसा डिवीजन होता है तो ग्रुप में 6-7 लोग मेंबर होते हैं, बाकी उसमें से एक ग्रुप का लीडर होता है और एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है जो काम करेगा इन द एब्सेंस ऑफ दैट ग्रुप लीडर। और ऐसे मिलकर के वो ग्रुप एक प्रोजेक्ट रेडी करता है। तो इसीलिए 1953 में इंडियन लीडर्स ने एक कमीशन रेडी किया, जिसको आप ग्रुप के इक्विवेलेंट समझ सकते हैं। उस ग्रुप में जो उस ग्रुप के लीडर थे, कैप्टन थे, उनका नाम था जस्टिस फजल अली। इनके अलावा ग्रुप में दो और मेंबर्स थे, के एम पनिक्कर और दूसरे थे एच एन कुंजरू। ये जो फैक्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हो सकता है आज के आपके एक्सरसाइज में भी आ सके, या हो सकता है कि आपके इन फ्यूचर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सके कि जस्टिस फजल अली कमीशन किससे रिलेटेड है। तो यहां पर आप अभी पढ़ रहे हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस को, यानी कि स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, इस कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं। और इसी कंसेप्ट के साथ आपने पढ़ा जस्टिस फजल अली कमीशन के बारे में, तो आपका जवाब आपको मिल गया कि जस्टिस फजल अली कमीशन राज्य पुनर्गठन आयोग से रिलेटेड है। तो ये तो हुआ एक ओवरव्यू इस कमीशन का। चलिए देखते हैं कि इस कमीशन ने क्या सजेशन दिया। तो 1955 में इस कमीशन ने जो प्रोजेक्ट रेडी किया था, जिसको हम हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं, इसको सौंप दिया। और उसी के बेसिस पर इंडियन पार्लियामेंट में डिबेट्स हुए। 1956 में जाकर के कहीं राज्य पुनर्गठन विधेयक को पास कर दिया गया। इसका मतलब कि जो ये एक्ट था, जो ये बिल था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का, उसको पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। और इसी के साथ अब भारत में 1956 के बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी, यानी प्रॉब्लम्स अभी भी थी। भले ही इस कमीशन ने अपना सजेशन दे दिया हो, लेकिन जो प्रॉब्लम्स थी बच्चों, वो ये थी कि जो आंदोलन थे अलग अलग स्टेट्स के डिमांड में, वो आंदोलन अभी भी चल रहे थे, जैसे कि नागा जनजाति का आंदोलन। ये आप ध्यान से सुनिए, नागा जनजाति का जो आंदोलन था उसके लीडर कौन थे? फिजो। इन्होंने आंदोलन शुरू किया और इसी के वजह से 1963 में नागा ट्राइब्स के लिए नागालैंड स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। कब हुआ? 1963 में। और इसी के तरह और भी पूर्वोत्तर के जो राज्य थे, यानी ये जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स मानी जाती हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसमें एक और स्टेट्स के डिमांड उठने लगी। जो मीजो ट्राइब थी उनको भी अपना ऑटोनोमस स्टेट चाहिए था, और मीजो ट्राइब का जो लीडर था उसका नाम था लाल डेंगा। लाल डेंगा ने अपने लीडरशिप के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसका नाम था नेशनल फ्रंट। आज भी ये काफी बार न्यूज में रहता है, और इसी के चलते यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन होने लगे। अलगाववादी का मतलब होता है बच्चों, जिसको अपना सेपरेट स्टेट चाहिए होता है, या फिर वो चाहते हैं कि इंडिया से अलग हो जाएं। अलगाववादी का मतलब इंडिया के सारे स्टेट्स में फूट डालना, कुछ इस तरह का कंसेप्ट होता है। तो नेशनल फ्रंट ने अलगाववादी आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन तभी 1987 यानी 1987 में कुछ अंडरस्टैंडिंग्स की गई, समझौते किए गए, और इसी समझौते में एक नया राज्य निकल करके आया। उस राज्य का नाम क्या था? तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि आंदोलन कौन कर रहा था? मिजो ट्राइब्स। तो राज्य कौन सा निकल के आएगा? मिजोरम। इसीलिए मिजोरम का स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ था? 1987 में। नागालैंड का कब हुआ था? 1963 में। और वैसे ही अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो थे, ये यूनियन टेरिटरी से हटा करके स्टेट का दर्जा पा गए। कब? 1987 में ही। इसके पहले मेघालय में भी अलग राज्य बनाने की बात चल रही थी, और इसीलिए 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल को पूर्ण राज्य यानी फुल स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे अपने वेस्टर्न इंडिया की तरफ, लेकिन आज हमारे पास समय कम होने की वजह से हम वेस्टर्न इंडिया के स्टेट्स फॉर्मेशन को नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।